ॐ शांति, ॐ शांति, ॐ शांति। जो दूर दूर बैठे हैं वो नजदीक आ सकते हैं। विषय हमारे रोज के जीवन से जुड़ा हुआ है। बाबा कहते हैं दृष्टि परिवर्तन से सृष्टि का परिवर्तन होता है, तो हमारी गुणग्राही दृष्टि होगी तो सृष्टि सुखदायी बन जाएगी। एक बहुत बड़े सेठ जी थे, बहुत अमीर भी थे, दयालु भी थे, दानी भी थे। एक दिन वो आराम कर रहे थे तो उन्हें किसी की दया भरी आवाज सुनाई दी। द्वार पे खड़ा कोई पुकार रहा था, मैं भूखा हूँ मुझे भोजन खिला दो, मैं भूखा हूँ मुझे भोजन खिला दो। तो सेठ जी दयालु भी थे और दानी भी थे, दोनों गुण थे उनमें। तो वो उठ खड़े हुए, द्वार पे गए, एक भिखारी था। सेठ जी उसे घर के अंदर ले आए और बहुत प्यार से उसको गरम गरम भोजन खिलाया। वास्तव में वो भिखारी नहीं था, वो तो यमदूत था जो सेठ जी को लेने आया था। लेकिन सेठ जी की दया की परीक्षा ले रहा था और उसमें सेठ जी पास हो गए तो यमदूत बहुत खुश हुआ। और उसने सोचा ऐसे दयालु सेठ जी ने मुझे गरम गरम खाना खिलाया तो मैं भी इस पे कुछ उपकार करूं। तो उसके हाथ में कर्मों के लेखे वाली एक किताब थी। उसने सेठ जी को कहा देखिए ये पुस्तक है, इसमें आपके जीवन भर के कर्मों का लेख है, 5 नंबर पन्ने पे, और बाकी पन्नों पे आपके पड़ोसी रिश्तेदार सबके कर्मों का लेख है। तो अभी आपको मेरे साथ चलना है, लेकिन मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूँ, आप अपना 5 नंबर पेज खोल के देख लो और उसमें आप कुछ ऐड करना चाहो, कुछ सुधार करना चाहो, आपको कुछ और अधिक चाहिए तो आप अपने पन्ने पे लिख सकते हो। आप बहुत दयालु हो और इसलिए मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, सबको नहीं मिलते ये। तो सेठ जी ने वो कर्मों के लेखे की बुक हाथ में ले ली और उसका 5 नंबर पेज खोला, और 5 नंबर जब पेज खोला तो 6 नंबर पे भी नजर पड़ गई, और 6 नंबर पेज उसके पड़ोसी का था। तो वो जल्दी जल्दी उसको पढ़ने लगे तो इसमें लिखा हुआ था निरोगी काया, बड़ा सा महल, सुख शांति की भरमार, अच्छी संतान, अच्छा धंधा। तो सेठ जी को गुस्सा आ गया, कहते इस आदमी को इतनी सारी चीजें, ये तो इतना खराब आदमी है, इतना लड़ाकू है, इतने झगड़े करता है, मेरे को तो कभी शांति से इसने जीने नहीं दिया, और इसके भाग्य में महल भी है, संतान भी है, शरीर काया भी स्वस्थ है। तो उन्होंने पेंसिल उठाई और उनकी जो बातें लिखी थी उनको काटना चालू किया, और इतनी देर में 5 मिनट पूरे हो गए। यमदूत कहता है सेठ जी लिख दिया जो लिखना था, लाओ किताब। अब सेठ जी के 5 मिनट तो पड़ोसी के भाग्य को काटने में चले गए, अपना बनाने के लिए तो समय ही नहीं बचा। तो कहीं हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि संगम युग में दूसरों को सुधारने में लगे हैं, दूसरों के अवगुण देखने में लगे, उनकी गिनती करने में लगे, उनको बदलने के पुरुषार्थ में लगे और उनकी लाइनें काटने में लगे और अपना समय निकलता जा रहा है। तो बाबा ने कहा बच्चे, संगम युग का एक एक पल बड़ा अमूल्य है, आपको एक एक पल का सदुपयोग करना है, क्योंकि जिंदगी इतनी छोटी है कि हमारे अपने काम भी पूरे नहीं हो पाते। जो लक्ष्य हम लेके चलते हैं उसके लिए समय कम पड़ता है, और अगर हमने दूसरों के लिए समय लगा दिया तो अपने लिए तो बचेगा ही नहीं। इसलिए बार बार भीतर जाकर के देखना है मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं किसी और के बारे में तो नहीं सोच रहा हूँ। बाबा ने एक मुरली में कहा था, आत्मा को छोड़ के शरीर के बारे में सोचना भी परचिंतन है, और फिर दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचना वो तो और भी बड़ा परचिंतन। संस्कृत में एक कहावत है, अमेध्याद अपि कांचनम बालाद अपि सुभाषितम। इसका अर्थ ये है कि सोना अगर कूड़े के ढेर पर भी पड़ा हो तो उठा लेना चाहिए, और अच्छी बात अरे एक छोटा सा बच्चा भी कहे तो सुन लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। अर्थात अच्छाई कहीं भी मिल जाए उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, गुण चोर बनना चाहिए। जनवरी की जो मैगजीन है उसमें दादी जानकी का जो संदेश है नए वर्ष का, उसमें दादी जानकी ने लिखा है कि गुणचोर बनो। तो किसी बहन ने हमको पत्र लिख करके भेजा कि दादी ने बड़ी अच्छी बात कही है, क्योंकि आज के जमाने में लोग क्या करते हैं, लौकिक दुनिया की बात उसने लिखी कि महिलाएं कपड़ों के स्टाइल की चोरी करती हैं, बालों के स्टाइल की चोरी करती हैं, जूतों के चप्पलों के स्टाइल की चोरी करती हैं, गुणों की चोरी नहीं करती, और इन स्टाइलों की चोरी करने में फिर दुखी होती हैं, ईर्ष्या करती हैं, द्वेष करती हैं। अगर दादी का ये शब्द सबको समझ में आ जाए कि स्टाइल की चोरी नहीं करनी, किसी की नकल नहीं करनी, किसी का घर कैसा है, किसी की गाड़ी कैसी है, किसी की शक्ल कैसी है, किसी का बैग कैसा है, किसी का शॉल कैसा है, उसकी नकल नहीं करनी, उसकी चोरी नहीं करनी, लेकिन उसके गुण कैसे हैं उनकी चोरी करनी। तो हम सबको बाकी चोरियों से बाबा ने छुड़ा दिया, लेकिन चुपके से किसी का गुण उठा ले ये बाबा ने सिखा दिया। एक मुरली है प्यारे बाबा की 29/3/82 की, 29 मार्च 82 की। तो उसमें शुरू में बाबा ने कहा कि आज मैं माला बना रहा था बच्चों की, मेरा एक एक बच्चा बहुत गुणवान है, गुणों से भरपूर है, लेकिन मैंने जब माला बनानी शुरू की तो मैं ऊपर से नीचे नहीं गया, मैं नीचे से ऊपर की ओर आया। अर्थात जो प्यादा ग्रुप के बच्चे हैं आज मैंने उनके गुणों की माला बनाई, और बाबा ने कहा मेरे जो सबसे कम पुरुषार्थ वाले प्यादे ग्रुप के बच्चे हैं ना, उनमें भी मैंने बहुत गुण देखे, उन गुणों के कारण ही वो बाबा के बने, उन गुणों के कारण ही वो ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ रही है, और उन गुणों के कारण ही वो अपना योगदान इस यज्ञ में दे रही है। तो बाबा ने कहा बाबा को तो लास्ट बच्चे में भी बहुत बहुत गुण दिखाई देते हैं, इसलिए बाबा ने माला को नीचे वाले स्टेप से बनाना चालू किया। अब अगर आखिरी बच्चे में भी इतने गुण है तो बाकी सारे बच्चे तो गुणों के भंडार हैं ही, और बिना गुणों के तो कोई बाबा का बच्चा बन नहीं सकता। भगवान की पसंद कोई छोटी मोटी पसंद तो नहीं हो सकती। और फिर बाबा ने कहा कि अगर किसी के अवगुण पे नजर जाती है तो बाबा ने कहा ये ऐसे ही है जैसे कोई अशुद्ध भोजन स्वीकार कर लेता है। बाबा ने कहा जब आप अपना चार्ट लिखते हो तो उसमें लिखते हो कि मैं खान पान की धारणा में कमजोर हूँ, अर्थात शुद्ध भोजन की धारणा कहीं कहीं टूट जाती है। तो बाबा ने कहा किसी को देखना और उससे कुछ ग्रहण करना ये बुद्धि का भोजन है, और अगर बुद्धि अशुद्धि को धारण कर रही है इसका मतलब बुद्धि के भोजन में अशुद्धि है। बुद्धि का भोजन ग्रहण करने की जो धारणा है उसमें कमजोरी है। और फिर बाबा ने कहा कि अगर ऐसा अशुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं तो विष्णु वंशी तो नहीं हुए ना, वैष्णव नहीं हुए, वैष्णव ढाबा ऐसे लिखा रहता है ना, वैष्णव ढाबा माना एकदम प्योर फूड। तो बाबा ने कहा फिर अगर विष्णु वंशी नहीं हुए तो कौन से वंशी बन गए, राम वंशी बन गए। तो क्या बनना चाहते हैं, विष्णु वंशी बनना चाहते हैं, पहले युग में आना चाहते हैं, लक्ष्मी नारायण की राजधानी में आना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा प्योर फूड खाओ, अगर फूड में मिलावट है तो फिर राम की सेना में आना पड़ेगा, यानी कि त्रेता युग में आना पड़ेगा। और फिर बाबा ने एक और बहुत सुंदर बात बताई। बाबा ने कहा कि कई बच्चे ऐसे हैं जो अगर किसी का अवगुण देख लेते हैं ना और उसको जान लेते हैं ना तो अपने आप को बहुत नॉलेजफुल समझने लगते हैं। कहते हैं देखो मेरे को एक नई बात का पता पड़ा, आप में से किसी को भी पता नहीं। तो बाबा ने कहा अच्छा मान लिया कि आपको एक नॉलेज मिल गई भाई किस व्यक्ति में क्या कमी है, उसने क्या गलती की, उसमें क्या बुराई है, ठीक है नॉलेज मिल गई अच्छी बात है। लेकिन बाबा ने कहा नॉलेज को कहते हैं लाइट और माइट, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो आपने उस लाइट और माइट से क्या कमाल किया, उस नॉलेज रूपी लाइट से किसी को रास्ता दिखाया क्या, उस नॉलेज रूपी माइट से किसी का जीवन बदला क्या, या बदला लिया? जब किसी की कमजोरी का पता पड़ जाता है तो फिर हम उससे बदला लेते हैं। तो बाबा ने कहा अगर नॉलेज मिल गई और उस नॉलेज की माइट से उस किचड़े को भस्म नहीं किया तो फिर ऐसी नॉलेज का फायदा क्या हुआ, ना आपकी उन्नति हुई ना सामने वाले की उन्नति हुई। और बाबा ने कहा ये नॉलेज तो ऐसे ही हो गई जैसे द्वापर युग वाले साधु संतों को नॉलेज थी, नॉलेज तो बहुत थी लेकिन फिर भी सृष्टि नीचे गिरती आई, सृष्टि का उत्थान नहीं हुआ। तो बाबा ने कहा ऐसी नॉलेज से तो उस नॉलेज का ना होना अच्छा है। और फिर बाबा ने कहा कि ब्राह्मण परिवार में जब किसी को इस प्रकार की नॉलेज नहीं होती ना तो कई बच्चे कहते तुम तो बुद्धू हो, तुम तो कुछ भी नहीं जानते, अरे इधर उधर क्या हो रहा है तुमको पता ही नहीं पड़ता, तुम सोए रहते हो क्या, दीन दुनिया की तुमको कोई जानकारी नहीं। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे को बुद्धू का लेवल मिल जाता है, बुद्धू का टाइटल मिल जाता है। बाबा ने कहा ये टाइटल अच्छा है, स्वीकार कर लो इसको, बोलो हाँ मैं बुद्धू हूँ, ये बातें मुझे ना पता है ना मैं पता करना चाहता हूँ और ना मुझे कोई आके बताता है और ना मैं सुनना चाहता हूँ, मैं तो बुद्धू ही अच्छा हूँ। तो बाबा ने कहा इन बातों में बुद्धू बन जाओ और कोई बुद्धू बोले तो खुशी से हंस के स्वीकार भी कर लो। बताते हैं कि एक बार कोई संत यात्रा पे जा रहा था, उसका बड़ा सा काफिला उसके साथ था, रात हुई सब लोग सो गए, सुबह 4 बजे संत उठे और उनका एक बहुत प्रिय शिष्य भी आंख खुल गई उठ गया, और उठते ही गुरुजी को जब नमस्कार करने गया तो कहता है देखो गुरु जी, आपके सारे चेले सोए पड़े, एक मैं ही उठाऊं, मैं कितना पंक्चुअल हूं अपनी साधना में, और ये तो सब आलसी हैं, पता नहीं कितने बजे उठेंगे। तब गुरुजी ने कहा बेटा, अगर जल्दी उठ के तुझे इनका चिंतन ही करना था तो इससे अच्छा तू भी सोया ही रहता। तूने उठ के क्या किया? तो बाबा ने कहा अगर हम किसी के अवगुण का चिंतन करते हैं तो लगता है कि उसके अवगुण का बखान कर रहे हैं, पर भूल जाते हैं कि हमारा भी परचिंतन का अवगुण प्रत्यक्ष हो रहा है। और अगर अपन किसी की कमी को समा नहीं पाते तो बाबा ने कहा ये भी समाने की शक्ति की कमी का प्रतीक है। समाने की शक्ति होती है समुद्र में, हमारा बाबा तो सागर के समान है, सबकी कमियां समा लेता है, और हम बच्चे मास्टर सागर हैं। तो आपने देखा होगा कि कोई छोटा सा बर्तन हो और उसमें आप पानी डालो साफ सुथरा, और उसमें अगर एक छोटा सा तिनका भी गिर जाए तो दिखता है ना, अरे पानी मैला है, तिनका गिर गया। थोड़ा सा बड़ा बर्तन हो उसमें दो चार कंकर गिर जाएं, वो भी दिखती हैं, अरे पानी मैला है, इसमें कंकर पड़ी है। लेकिन सागर में कितनी नदियों का कूड़ा किचड़ा आके गिरता है, दिखता नहीं है ना। समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ तो एकदम स्वच्छ जल नजर आता है। तो जिसका दिल जितना विशाल होगा वो उतना ही ज्यादा स्वच्छ होगा, और दिल छोटा होगा तो छोटी सी गंदगी भी दिखाई देगी। तो बाबा ने कहा सागर की बच्चियों, सागर बनो, बाल तिनका कंकर सब तली में ले जा करके छिपा दो, ऊपर कुछ भी ना दिखे, ना दूसरों को दिखे, ना खुद के चिंतन में बार बार आए। होता क्या है कि अपन बोलते भी नहीं है, किसी को सुनाते भी नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर उस व्यक्ति के बारे में चिंतन चलता है सूक्ष्म। तो बाबा ने कहा खुद भी मन मना भव रहो और दूसरों को भी मन मना भव रहने में विघ्न मत डालो, सूक्ष्म में भी चिंतन को स्टॉप कर दो, क्योंकि सूक्ष्म की भी वाइब्रेशन तो फैलती है ना, और जिसके बारे में हम चिंतन कर रहे हैं वो वाइब्रेशन सीधे उसी के पास जाती है। तो अब हम देखेंगे कि जब हम किसी के अवगुण देखते हैं तो हमारे कितने नुकसान होते हैं और उनसे हम कैसे बचें। बाबा ने बताया सबसे पहली बात, आदत बिगड़ जाती है, अवगुण देखते देखते वो आदत बन जाती है, और कहते हैं आदत बुरी बला, और फिर हम कोशिश करके भी गुण देखने की कोशिश करते हैं तो वो अवगुण ही सामने आता है। तो जैसे बाबा ने कहा संस्कारों का संस्कार करो, तो इस आदत को भी खत्म करना है, नहीं तो बाबा कहते हैं आदत अदालत में ले जाती है, धागों से बना रस्सा तोड़ना मुश्किल और आदत जो पड़ गई उसको छोड़ना मुश्किल। तो अपनी अवगुण देखने की आदत को तोड़ना है ताकि वो हमें बांधे ना, हमारे लिए बंधन ना बने, बार बार मन को गुण दर्शन की ओर ले जाना है। हमारी संस्कृति गुण दर्शन की है, अवगुण दर्शन की नहीं है। और दूसरा बाबा ने कहा कि किसी की कमी कमजोरी देखना ये अशुद्ध भोजन है। तो जब कोई बार बार अशुद्ध भोजन खाएगा तो क्या होगा, बीमार पड़ेगा, कमजोर हो जाएगा, हेल्थ बिगड़ जाएगी, हाजमा बिगड़ जाएगा, चक्कर आने लगेंगे। तो अगर इस प्रकार बार बार अशुद्ध बातें अंदर जाती है ना, तो आत्मा का बल अक्षीण हो जाता है, आत्मा कमजोर हो जाती है, आत्मा माया का सामना नहीं कर पाती है। और कई बार तो किसी के अवगुण देख के संशय भी आ जाता है, और कई बार किसी के अवगुण देख के हम उसको फॉलो भी कर लेते, अपना गुण छोड़ देते हैं और दूसरे के अवगुण को फॉलो कर लेते हैं। जैसे एक बहन थी, वो बड़ी उदार दिल की थी, बड़े उदार चित की थी, घर में जो भी आता था ना उसकी बहुत अच्छी खातरी करती थी। एक दिन वो अपनी सहेली के यहाँ चली गई और उसकी सहेली अपने ढंग की थी, उसने ना तो चाय पूछी, ना कुछ नमकीन दिया, ना ठीक से बात की। तो ये जो उदार दिल वाली बहन थी, ये वापस आके कहती है ठीक है आने दो इसको मेरे घर में, मैं भी इससे ठीक से बात नहीं करूंगी, मैं भी इसको ना चाय पूछूंगी ना नमकीन पूछूंगी। अब किसी का अवगुण देख करके क्या किया, अपना गुण भी छोड़ दिया, अवगुण वाले को अपना गुरु बना लिया और अब उसके कदम पे कदम रखने चली है। जैसा तू करेगी ना वैसा ही मैं भी करूंगी। और कहते हैं गुरु जिनके अधेले चेले सत्यानाश, जो ऐसे आधे अधूरे को गुरु बनाएगा उसका क्या होगा, होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि तुम जब मेरे घर आएगी ना तो एक प्रकार की नहीं 10 प्रकार की चीजें खिलाऊंगी, और एक प्रकार की नहीं 10 प्रकार की चीजें पीने की ऑफर करूंगी, ताकि मेरे को देख के तू भी खिलाना सीखे। तो किसी के अवगुण को लेना नहीं है, लेकिन अपने गुण का दान करना है, अपने गुण को छोड़ना नहीं है, सामने वाले को देख के अपनी अच्छी आदतों को त्यागना नहीं है, बल्कि उनको भी अपनी अच्छी आदतों का दान देना है। और फिर बाबा ने कहा कि अगर किसी में कोई बुराई है तो बाबा ने कहा आप वकील और जज क्यों बन जाते हो, भाई भाई बन करके शुभ भावना से उसकी बात बताओ और शिव बाबा की बनी सुप्रीम कोर्ट में केस को दाखिल करो, खुद ही वकील और जज मत बनो, खुद ही फैसले मत सुनाओ, क्योंकि आप सब आपस में भाई भाई हो, आप में कोई वकील नहीं है और कोई जज नहीं है, वकील और जज तो बाबा है, तो बाबा के सामने केस लाओ। तो हम सब आपस में कौन है, भाई भाई है, हमारे में से किसी को भी किसी का फैसला करने का हक नहीं है, किसी की कमी कमजोरी बताने का हक नहीं है। शुभ भावना हम दे सकते हैं, केवल हम बीके ही आपस में भाई बहन नहीं है, सारी दुनिया हमारे भाई बहन है, बहुत बड़ा परिवार है। शुरू से बाबा ने ये पाठ पक्का करवाया, सब आपके भाई बहन है, आप आपस में भाई बहन हो, सबके लिए शुभ भावना रखो। देखो हमारी दादी निर्मल शांता थी ना, उसके जीवन की एक बहुत सुंदर घटना है, उसने तो एक जज को भी भाई बना लिया, हम तो खुद जज और वकील बनने को तैयार बैठे हैं, लेकिन उसने एक जज को भी भाई बना लिया। जब बाबा साकार में थे ना, तब की एक घटना है, बाबा का कोई वारंट आया था, उस समय तो वारंट आ ही जाते थे बाबा के, क्योंकि शुरुआती दिन थे, एनटीओ मंडली थी। तो बाबा ने दादी निर्मल शांता को वो वारंट देके कोर्ट में भेजा, तो सामने जज बैठा था, जज ने पूछा बेटी तुम आई हो वारंट लेके, तुम्हारा कोई भाई नहीं है क्या, क्योंकि उस जमाने में महिलाएं कोर्ट में नहीं जाती थी, कम जाती थी। तो पूछा, तुम्हारा कोई भाई नहीं है क्या? उसके पूछने का भाव ये था कि बाबा का कोई बेटा हो और वो वारंट लेके आता तो ज्यादा अच्छा रहता। तो उसने पूछा, तुम्हारा कोई भाई नहीं है क्या? कितने भाई हैं तुम्हारे? तो दादी कोर्ट में ऐसे सोच की मुद्रा में खड़ी हो गई जब उसने सवाल पूछा। तो जज कहता है, सोच क्या रही हो? मैं पूछ रहा हूँ, बहन जी बोला था, बेटी नहीं, बहन जी आपके कितने भाई हैं? तो कहती है, जज साहब सोच रही हूँ कितने बताऊं। तो जज कहता है, सोच रही हूँ कितने बताऊं? भाई बताने में भी सोचना पड़ता है क्या? बोली, हाँ आप मुझे बहन जी कह रहे हो तो एक भाई तो आप, और ऐसे सारी दुनिया भाइयों से भरी पड़ी है, कितनी गिनती बताऊं? और जज ने जैसे ही ये सुना तो एकदम पिघल गया, पानी पानी हो गया। कहता है, आपने मुझे भाई कहा, आपके बाबा की शिक्षा कितनी प्रैक्टिकल है, आपके भाई भाई की दृष्टि कितनी पक्की है। तो ठीक है, कोई भाई अपनी बहन पे केस नहीं चलाता, तो मैं भी इस केस को खारिज करता हूँ। और फिर दादी ने कहा कि बाबा ने आपको भोजन के लिए बुलाया है। तो वो दादी के साथ भोजन के लिए गया कराची में, जहाँ बाबा का स्थान था, और वो बाबा का सहयोगी बना। तो देखो, हम खुद जज वकील बन रहे हैं अपने भाई बहनों के लिए, फैसले करते हैं उनके, उनको सजा सुनाते हैं, और दादी ने तो एक जज को ही भाई बना लिया। तो हम अपने भाई बहनों के लिए जज ना बने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाबा की है, बाबा को सुनाई। हमारा काम है शुभ भावना देना, हमारा काम है सामने वाली आत्मा को शक्ति देना, सकाश देना, उसके सुधार की शुभकामना करना। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि अमानत में खयानत नहीं करो। अमानत में खयानत का मतलब क्या है? अमानत में खयानत का मतलब ये है कि बात तो छोटी सी थी, लेकिन आपने उसको बढ़ा करके और फिर केस फाइल किया, तो अमानत में खयानत हो गई ना, छोटी बात को बड़ा कर दिया ना। अच्छा, जादूगरी किसमें है? छोटी बात को बड़ा करने में या बड़ी बात को छोटा करने में? जादूगर क्या करता है? बहुत बड़ी सी चीज को एक छोटी सी डब्बी में डाल देता है, तभी तो लोग ताली बजाते हैं। बड़ी सी चीज को अपनी जेब में डाल लेता है, तब तो लोग उसका जादू देखते हैं। तो जादूगरी इसी में है कि हम बात को छोटा कर दें, इतना छोटा कर दें कि वो पहाड़ से राई, राई से रुई, और रुई बना के उड़ा दें, बात थी नहीं। कोई पूछे, अरे भाई आपके बीच में कोई बात चल रही थी? तो हम कहें, नहीं जी, वो तो रुई बन के उड़ गई, कुछ नहीं बचा। ये है जादूगरी। तो अमानत में खयानत नहीं करना, छोटी बात को नमक मिर्च लगा करके बड़ा बड़ा नहीं बनाना। एक मुरली में बाबा ने कहा था, कई बच्चे क्या करते हैं, गुड़िया बनाने का बहुत शौक है कई बच्चों को, एक छोटी सी गुड़िया लेते हैं, फिर बातों का साज श्रृंगार करते हैं, और फिर बड़ी 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 बनाते हैं, और फिर जब वो नहीं संभलती तो कहते हैं, बाबा ले लो ना, और फिर ज्ञान सागर में उसको बहा देते हैं, जैसे लोग देवियों की मूर्ति को बहाती। तो बाबा पूछता है, जब ज्ञान सागर में ही बहाना था तो इतना श्रृंगार क्यों किया, इसको इतना बड़ा रूप क्यों दिया? जिस दिन ये छोटे से रूप में आई थी उसी दिन सागर में बहा देते तो आपका इतना समय तो ना जाता। तो जो बात जैसी है, जितनी बड़ी है, उस बात को उसी रूप में सुनाओ, शुभ भावना के रूप में सुनाओ। मेरा अपना भी एक छोटा सा अनुभव है। एक बार मैं अहमदाबाद में जा रही थी, तो एक गाड़ी चलाने वाला भाई था और एक बहन छोटी मेरे साथ बैठी थी। तो छोटी बहन ने कोई चीज खाई और उसका जो रैपर था वो गाड़ी की खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो गाड़ी चलाने वाला भाई कहता, अरे बहन जी आपने ये क्या किया, कागज सड़क पे फेंक दिया, सड़क गंदी हो गई। आपको पता नहीं ये स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, आप कागज को अपनी मुट्ठी में रखते, गाड़ी में एक तरफ रख देते और जब डस्टबिन आता है अहमदाबाद जाने के बाद तो अपन डस्टबिन में डाल देते। तो उस भाई की ये बात सुन के हमको बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा भैया तेरी बात से हम बड़े प्रभावित हुए, आगे से हम ध्यान रखा करेंगे, अगर कोई ऐसा कागज का टुकड़ा भी हाथ में है ना तो बस मुट्ठी में ही रहेंगे लेकिन खिड़की से बाहर नहीं फेंकेंगे। शुक्रिया आपका, आपने ध्यान खिंचवाया। अभी गाड़ी 20 मिनट ही और आगे चली थी तो वो भाई पीछे मुड़ के कहता है, बहन जी आप अमुक भाई को जानती हो? मैंने कहा बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो आपको पता है उसका खान पान कैसा है? खान पान की उसकी कोई मर्यादा नहीं है, कभी बाजार का खा लेता है और कभी कभी तो हमने देखा है नॉन वेज भी खा लेता है। और बहन जी आपको पता है वो कितने बजे उठता है? 10 बजे से पहले तो कभी उठता ही नहीं। तो मैंने कहा आपने उस भाई को देखा है क्या खाते हुए और उठते हुए? बोला नहीं, मुझे तो कोई सुना रहा था। तो मैंने कहा जिसने आपको सुनाया उसने देखा है क्या? बोला नहीं, वो भी कह रहा था मैंने किसी और से सुना है। तो मैंने कहा भैया अभी अभी आप स्वच्छ भारत अभियान की चर्चा कर रहे थे, एक कागज के टुकड़े से तो भारत पता नहीं गंदा होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये जो सुनी सुनाई बातें अपन नमक मिर्च लगा करके और दूसरे तक प्रसारित करते हैं इनसे भारत जरूर गंदा हो जाएगा। और द्वापर युग के बाद अगर इस देश का पतन हुआ तो सच पूछो ऐसी बातों से ही हुआ है। कितनी बातें लगा लगा के किसी का दिल फिटा दिया, किसी के दिल में शत्रुता भर दी, किसी का दिल खट्टा कर दिया, किसी का दिल किसी से दूर कर दिया। हमारे लिए तो फन था, हमने तो जी समय पास करने के लिए कहानी सुनाई थी, हमने तो जी आपको सूचना देने के लिए कहानी सुनाई थी, लेकिन वास्तव में ना तो ये मनोरंजन था ना ये सूचना थी, ये तो मनोभंजन था, ये तो एक बहुत बड़ा दूसरे के चित्त को मैला करने का षड्यंत्र था। मेरा चित्त तो मैला है किसी गलत बात से जिसकी मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, और मैंने वो किसी दूसरे के चित्त पे डाल के उसको भी मैला करने का अपराध कर दिया। सड़क की गंदगी तो हवा भी उड़ा दे पानी भी बहा दे लेकिन चित्त की गंदगी को साफ करना बहुत मुश्किल है, और अगर वो साफ ना हो तो अगले जन्म तक भी साथ जाती है और अगले जन्म तक भी और अगले जन्म तक भी, और हर जन्म में वो गंदा चित्त कितनी गंदगी वातावरण में फैलाएगा। इसलिए हर हाल में अपने चित्त को बचा के रखो। हमारी दो जिम्मेवारियां, एक तो हम अपने चित्त को स्वयं गंदा नहीं करेंगे और दूसरा अगर कोई दूसरा करने की कोशिश करे तो गंदा होने नहीं देंगे। हम ये भी नहीं कहेंगे जी हम सुनना तो नहीं चाहते थे लेकिन उसने सुना दिया, हम पे जिम्मेवारी है, कान हमारे हैं, चित्त हमारा है, किसी और का नहीं है। कोई जबरदस्ती इन्हें ऑक्यूपाई कैसे कर सकता है? जैसे कोई पड़ोसी हमारे घर में अगर कूड़ा डालने आए तो हम डालने देंगे क्या? खड़े हो जाएंगे, चुकन्ने हो जाएंगे। तो ये शरीर भी मंदिर है, इसकी हर एक इंद्री कमल तुल्य है, तो किसी भी इंद्री के माध्यम से इस मंदिर में अंदर कूड़ा प्रवेश नहीं होना चाहिए, चाहे आंखों से चाहे कानों से या किसी और तरीके से। इस मंदिर को स्वच्छ रखना हम सबकी ड्यूटी है। इस मंदिर में कौन बैठा है, कौन बैठा है, इस मंदिर में बाप दादा की अति प्यारी मूर्त बैठी है, जिसे बाप दादा बहुत प्रेम करते हैं। इस मंदिर में वो आत्मा बैठी है जिसको बाबा ने कहां कहां से चुन करके लाया है। तो बाबा ने कहा, कर्मों की गहन गति को भी सामने रखना है बच्चों को। कर्मों की गहन गति क्या कहती है? दादी जानकी कहती है, हम किसी का अवगुण देखेंगे तो फिर वो भी हमारा देखेगा, जो देंगे वही वापस मिलेगा। हम दूसरों का अवगुण देखें और सोचें वो हमारे गुण ही देखेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो बोएंगे वही उगेगा। और फिर बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर उदाहरण दिए। एक मुरली में बाबा ने कहा था, आप सब बच्चे दत्तात्रेय हो। दत्तात्रेय कौन सब जानते हैं? दत्तात्रेय अर्थात तीनों देवताओं के अंश से बना हुआ एक देवता, और उसने 24 गुरु किए थे। नंबर एक जल, आप गिनती करते जाना, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, सागर, अजगर, कबूतर, हिरण, हाथी, पतंगा, मछली, भंवरा, मधुमक्खी, शहद निकालने वाला कुरंग पक्षी, कन्या, बालक, सर्प, पिंगला, बाण बनाने वाला और मकड़ी, ये 24 उसने गुरु बनाए। हरेक से उसने गुण उठाए। इनमें जड़ चीजें भी हैं, चेतन चीजें भी हैं। तो हमारे चारों ओर जड़ चीजें, चेतन चीजें, उनसे हम भी तो गुण उठाएं। इसलिए बाबा ने कहा, आप सब बच्चे दत्तात्रेय हो, अर्थात सबके गुण उठाने वाले हो। और सबसे बड़ा गुण उठाने का जो हमारे साथ सामने साधन है, वो है पेड़, वो है फूल का पौधा। आप देखिए, पेड़ को लीजिए, फूल को लीजिए, उसकी जड़ में अपन कितनी गंदी खाद डालते। गुलाब को देखिए, एकदम सड़ी हुई खाद उसकी जड़ में डाली जाती है, लेकिन क्या करता है, उसको सुगंधित फूल में बदल लेता है। ये बहुत बड़ा गुण है। अगर कोई गुलाब की जड़ में सेंट डाले तो उसका विकास ही नहीं होगा, और जितनी गंदी खाद डाली जाएगी वो पनपेगा और वो बहुत सुंदर सुगंधित फूल पैदा करेगा। तो बाबा कहता है, आप बच्चे भी अगर कोई आपकी ग्लानी कर भी दे, आपकी बुराई कर भी दे, आपके अवगुण का वर्णन कर भी दे, तो घबराओ मत, खुद करो मत। लेकिन अगर कोई कर भी दे तो घबराओ मत, समझो मैं गुलाब का फूल हूँ और ये लोग मेरी जड़ों में खाद डाल रहे हैं। आप देखो, गुलाब के फूल को कहते हैं फूलों का राजा, और ब्रह्मा बाबा बनता है सतयुग में सारे विश्व का राजा। तो ब्रह्मा बाबा ऐसा राजा कैसे बना, विश्व महाराजा कैसे बना? क्योंकि उनकी जड़ों में लोगों ने बहुत खाद डाली। सबसे ज्यादा ग्लानी किसकी हुई? शिव बाबा के बाद ब्रह्मा बाबा की। और जितनी अधिक जड़ों में खाद डली उतने ही बड़े वो राजा बने, महाराजा बने। तो हमारी जड़ों में भी अगर लोग कोई खाद डालते हैं तो घबराना नहीं है, हम बहुत महान बनने वाले हैं, ऐसा समझ लीजिए। एक बार एक गांव में एक महात्मा जी को आना था। तो आपको पता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कोई काम नहीं होता और उन्हें केवल मनोरंजन का, हंसने का, हंसाने का साधन चाहिए। तो ऐसे कुछ खाली लोग भी उस गांव में थे। तो उन्होंने आपस में मीटिंग की, कहने लगे भैया महात्मा जी आ रही हैं और अपन मिलके ऐसा कुछ काम करें कि महात्मा जी को गुस्सा आए। तो योजना बनते बनते आखिर में ये योजना बनी कि सबके घरों से जो टूटे हुए जूते हैं, सूखे टूटे हुए, वो इकट्ठे कर लिए जाए और उनकी एक माला बनाई जाए और महात्मा जी जैसे ही गांव में प्रवेश हो उनके गले में वो माला डाल दी जाए तो महात्मा जी को गुस्सा आएगा और फिर अपन खूब मजे लेंगे, खूब हंसेंगे। एक तो योजना बन गई, जूतों की माला तैयार हो गई, एकदम सूखे और एकदम टूटे हुए भद्दे गंदे जूते, और वो माला लेके गांव के सीमा पर वो सब लोग खड़े हो गए। बाकी लोग भी थे लेकिन ये लीडर थे और इन्होंने कह दिया था महात्मा जी का स्वागत हम ही करेंगे और कोई आगे नहीं आएगा। तो महात्मा जी अपनी मंद गति से चलते हुए, रूहानियत की चाल से चलते हुए, अकेले ही थे, उनके साथ कोई काफिला नहीं था, और बड़ी मधुर मुस्कान लिए, सौम्यता के साथ, धैर्य के साथ, प्रेम बिखेरते हुए सामने से आ रहे थे और ये स्वागत के लिए खड़े हुए थे। तो धीरे धीरे चलते चलते महात्मा जी इनके बिल्कुल नजदीक आ गए और जैसे ही नजदीक आए तो ये जो जूतों का हार तो थोड़ा पीछे छिपा रखा था, पहले कुछ सामने थे, सबने कहा ये महात्मा जी आपका इस गांव में बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे गांव में पधारे, हम धन्य हो गए, आप जैसी महान आत्मा के चरण पड़े, हमारा गांव पवित्र हो गया, महात्मा जी आपने हमें आपके स्वागत का मौका दिया, आओ भाई महात्मा जी का स्वागत करो। और ऐसे कह के उनमें से एक ने वो जूतों का हार महात्मा जी के गले में डाल दिया और फिर देखने लगे अब क्या होगा, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। लेकिन महात्मा जी तो इतने मुस्कुराए, इतने हंसे, पहले भी मुस्कुरा रहे थे लेकिन अब तो थोड़ी मुस्कान और तेज हो गई और चेहरा प्रसन्न हो गया, आंखों में चमक आ गई। वो तो सारी खुसर फुसर करने लगी, बोला ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ, ये महात्मा जी तो मुस्कुरा रही हैं, इनके तो चेहरे की चमक बढ़ गई, ये तो और ज्यादा खुश हो गए, ये क्या हुआ, लगता है इनको दिख नहीं रहा है। तो उनमें से एक धीरे से कान में कहता है, महात्मा जी ये जो आपके गले में पड़ा है ना, ये जूतों का हार है, पुराने जूतों का, टूटे जूतों का। तो महात्मा जी कहते हाँ हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा ये क्या हुआ भाई, ये महात्मा जी पे कोई असर नहीं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, नहीं असर हो रहा है, थोड़ी देर में हो जाएगा। तो कहते महात्मा जी आइए बैठिए आसन पे और अपना प्रवचन सुनाइए। तो महात्मा जी आसन पे पलाथी मार के बैठ गए और जूतों का हार गले में है और सुनाने लगे। कहती हैं प्रभु के प्रिय भाइयों और बहनों, मैं लंबी यात्रा से आ रहा हूँ और मैं आपको बताऊं मैं कितने गांवों में गया। इससे पहले मैं एक गांव में गया था, वहां लोगों ने मुझे मोतियों का हार पहनाया था और मैं समझ गया था कि ये मोतियों का काम करने वाले सोनियों का गांव है। और उसके बाद मैं जब अगले गांव में आया तो लोगों ने मुझे फूलों का हार पहनाया और मैं समझ गया था कि ये मालियों का गांव है। और अब मैं आपके गांव में आया तो आपने मुझे ये हार पहनाया, मैं समझ गया ये मोचियों का गांव है। तो जो गुण उठाने वाला व्यक्ति है वो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता, हर बात में वो जीतेगा, हर हाल में वो जीतेगा, हर परिस्थिति में जीतेगा, क्योंकि वो बुराई में भी अच्छाई ढूंढ रहा। और जो अच्छाई में बुराई ढूंढेगा वो कभी जीत नहीं सकता। इसलिए कहा, अगर आप किसी के गुण देखेंगे तो शत्रु भी मित्र बन जाएगा, और अगर अवगुण देखेंगे तो अपना भी शत्रु बन जाएगा। और आजकल हम एक बात देखते हैं कि परिवारों में जहां हम रहते हैं, चाहे उसमें 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो लंबे समय से नजदीक रहते रहते एक दो का गुण कई बार देखना भूल जाते। होना ये चाहिए कि नजदीक वाले के गुण हमें सबसे अधिक देखने चाहिए, क्योंकि उसके साथ हमें लंबे समय तक रहना है। हम कई रिश्तेदारी में दूर बाहर जाते हैं तो उनके गुण देख के आके वर्णन करते हैं, उन्होंने खाना बहुत अच्छा बनाया, लेकिन घर का व्यक्ति जो रोज खाना बना के खिला रहा है उसके गुण का एक दिन भी वर्णन नहीं करते कि ये रोज खिलाता है। बाहर गए रिश्तेदारी में, किसी ने हमें घुमा दिया गाड़ी में, हम कहते हैं भाई गाड़ी में उसने बहुत घुमाया, और घर वाला व्यक्ति हमारे छोटे छोटे काम भी गाड़ी से हमें रोज करवा के देता है, उसकी हम महिमा करना ही भूल जाते। बाहर वाले ने हमारे पे 100-500 खर्च कर दिए तो हम कहेंगे अरे उसने बड़े खुले दिल से खर्चा किया, और घर वाले हमें इतने सालों से पाल रहे हैं, सारा खजाना खाली कर दिया हमारे पे, उनकी हम महिमा करना ही भूल जाते। तो जो हमारे बहुत करीब है, जिनके साथ हमारी दिन रात गुजरते हैं, चाहे वो सेंटर पे हों चाहे घर में हों, उनकी छोटी छोटी बातों को भी हम अप्रिशिएट करें, उनके गुण देखें, उनकी महिमा करें, तो हमारे रिश्ते बहुत सुंदर बन जाएंगे और वही घर हमें स्वर्ग जैसा लगने लगेगा। इसलिए गुणग्राही दृष्टि और सुखदायी सृष्टि। ओम शांति।
सुगंध अनोखी फैलानी है, गुण रूपी मोती एकता लानी है।